Yatasya Dhyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri
मन मनस कामत प्राण मद्दत्थे त्यक्त दैह का ये त्यक्त लोक धर्मांश मद्दत्थे तान विभार में हम सनातन गोस्वामी जी की टीका का मैंने टीका की मैंने व्याख्या की थी। इसलिए वो अभी तक बची हुई हैं। ये शब्द के लिए ये तक्त लोक धर्मांश यह पुल्लिंग पद है। इसका तात्पर्य यह है स्त्री पुरुष कोई भी व्यक्ति, यहां पर व्यक्ति व्यक्ति माने पुल्लिंग है, इसलिए ये शब्द का प्रयोग स्त्री के लिए ही नहीं, स्त्री पुरुष सबके लिए। अर्थात स्त्री हो तो पति पुत्र इत्यादि से भी, अथवा पुरुष भी हो उस भाव से युक्त होने से मैं सब प्रकार से उनका पालन करता हूं। यदि कोई भी हमारे लिए लोक धर्म वेद धर्म इत्यादि सबको प्रत्याग करके हमारे लिए भजन करता है तो मैं चाहे स्त्री हो उस भाव से युक्त अथवा पुरुष हो सबके लिए मैं पालन पोषण किया करता हूँ और उसे सब प्रकार के भय से रक्षा करता हूँ। ये हम लोगों को सांत्वना दे रहे हैं। कभी कभी हम लोग भजन करते समय में यदि स्त्रियां हैं उनके लिए विशेष स्त्रियां हैं वो उनके लिए विशेष कुछ विघ्न बाधाएं आती हैं, पति इत्यादि उनके विरुद्ध जब हो जाते हैं जैसे मीराबाई के पति इत्यादि या और भी साधारण लोगों के लिए यदि कोई भजन करना चाहती हैं तो उसमें विघ्न बाधा डालते हैं। ये गोपियां भी भजन करना चाहती थी, उनके पतियों ने उनको कमरे में बंद कर दिया, नहीं जाने दिया। उसके लिए कारण जब विघ्न बाधा आती है तो क्या लो तुम्हें पीछे कन बस ले दिव्या। जितने प्रकार के विघ्न हैं उन विघ्नों से रक्षा करते हैं। इसलिए मत सोचो जो कृष्ण सो गए हैं हमारे विघ्न बाधाओं को नहीं देखते हैं और इतने कष्ट हमारे ऊपर में आ रहे हैं, मैं भजन नहीं कर पाती हूं और इतनी हमारी उत्पीड़न हो रही है हमारी, मत सोचो। इसको इस रूप में देखना चाहिए, ये हम इसके लिए योग्य नहीं है। हमारे संस्कार से हमको जिस रूप में रहना चाहिए उस रूप में रहते नहीं है और भगवान के प्रति उतने समर्पित भी नहीं है, इसलिए ये विघ्न बाधाएं आती हैं। तत्ते अनुकंपां सुषुमिक्षमाणो, यहां पर विचार करना चाहिए। हम कुछ इस रूप में व्यवहार कर सकते थे जो घर वाले हमारे प्रति प्रसन्न न रहे, उनसे विरोध करने की हमें क्या जरूरत है, लड़ने की क्या जरूरत है, हमारा भी कुछ इसमें दोष है। और कृष्ण के प्रति जैसा समर्पित होना चाहिए वैसे समर्पित भी नहीं है, इसलिए कृष्ण हमारे अधिकार को बढ़ाने के लिए यदि सचमुच में निष्कपट है तो वो ऐसे ही करते करते भोगों से और कृष्ण की ऊपर से हाथ ऐसा रहेगा, धीरे 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 ये भजन मार्ग में जो विघ्न है वो सब दूर हो जाए। और पोषण करते हैं, पोषण है ना, क्या खाने पीने इत्यादि की, कपड़े इत्यादि की जो आवश्यकता है, लोगों को प्रेरणा दे करके अपने जैसे तैसे उसको पूरा करेंगे, किंतु ये भी पोषण नहीं। पोषण क्या, भक्ति का पोषण। जो अभी अपने चेष्टाओं से जो हम करते हैं ये भक्ति होती है, ये अभी शुद्ध भक्ति नहीं है। जब भगवान के परिकरों से संबित और संधिनी, संबित और हलादिनी की सार वृत्ति जिसको भक्ति कहते हैं, ये बिना भगवत कृपा के और भागवतों के कृपा के नहीं आती। तो भगवान कभी कभी अपने भक्तों के माध्यम से, ऐसे भक्तों के माध्यम से जैसे नारद जी को प्रेरणा देकर के ध्रुव को, प्रहलाद को उन्होंने पोषण किया भक्ति का, ऐसे अथवा कभी डायरेक्ट रूप से उसके अंतर में प्रेरणा देकर के भक्ति के द्वारा उसका पालन पोषण करते हैं। बिना भगवत कृपा के वो सब भाव नहीं आ सकते। भजन में बाधाएं भी दूर नहीं होंगी और भजन में लालसा नहीं आएगी, रुचि निष्ठा, रुचि आसक्ति भाव भी नहीं होगा बिना भगवत कृपा के। चाहे भगवान की वो कृपा पूर्ण रूप से रसगुल्ला ठाकुर का भोग लिया हुआ दिया हुआ है या भोजन वो दे दे दो खा लो, अने तो कहो जैसे हमको लकड़ी, आग, चूल्हा, चक्की और चावल दाल तरकारी दे दीजिए, मैं रसोई बना लूंगा। तो ये सब चीजें सामग्रियां देना भी भगवान की कृपा है, अर्थात साधन भजन में रुचि देना, उसके लिए अनुकूल परिस्थिति तैयार करना, ये भी भगवान की ही कृपा है, बिना इसके नहीं आएगा रुचि, अपने आप नहीं आएगी, लाख चेष्टा करो। यदि भगवान को उसके लिए कृपा के रूप में आश्रय करोगे तब भगवान यदि समझेंगे कृपा पात्र है वो वरण करेंगे हमें, क्या है वो ना, जम ए वही से बेणीते, वो देखेंगे जे ये दीनहीन है, हमारे प्रति समर्पित है, तो वो करना करके भक्ति को देंगे। इसलिए ये करें जो वो रक्षा करना विघ्न बाधाओं से, तथा जो पोषण है और पालनीय क्या भक्ति का देना। हम लोग लाख चेष्टा करते हैं, भक्ति जो शुद्ध वृत्ति है वो सहज ही नहीं आती, किंतु उनकी कृपा होगी हम वो ऐसा हो सकेंगे जब हम उसके लिए अधिकारी होंगे और भगवान समझेंगे, जरूर कृपा करेंगे। इसलिए हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए भगवान की कृपा हमारे प्रति नहीं है, इतने विघ्न बाधा रहे हैं और भगवान की भक्ति नहीं है, वो जो ठीक समय पर वो जरूर देंगे। निरुपाधिक प्रेम दान में निरुपाधिक प्रेम देते हैं किंतु समय पर देंगे, अभी हम लोग इसका उपयोग नहीं कर सकेंगे, समझ नहीं सकेंगे। जैसे 5 वर्ष की लड़की को यह शिक्षा दिया जाए या ऐसे बेटा होता है या बेटी होती है, संतान उत्पत्ति होती है, तो वो क्या इसका उपयोग करेगी। ठीक इसी तरह से उपयुक्त अवस्था नहीं आने पर भगवान की कृपा को अनुभूति, हमने उनकी कृपा तो है, अनुभूति नहीं कर पाते, उपलब्धि नहीं कर पाते हैं। दैहिक शब्द से पति पुत्र इत्यादि, स्त्री भाव सुलभ, लज्जा धैर्य इत्यादि से भी ग्रहणीय, अर्थात इन सब की रक्षा करते हैं भगवान। कैसे? उनके पतियों को उनके प्रति ये भावना दिले, ये तुम्हारी प्रिय स्त्री है और ठीक वैसे ही तुम्हारी प्रिया है, वो तो है ही नहीं उनके पास में, उनसे कोनो संबंध नहीं है पतियों का, किंतु उनकी प्रतिकृति कर, दूसरी प्रतिमा बनाकर और उनमें जैसा लगते हैं जो वही ठीक गोपी है और उनके साथ में संबंध कर रही है, बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, रसोई बन रही है, उनको पानी पिला रही है, खिला रही है, सब पालन पोषण सब वो कर रही है, वो समझते कि वही हमारी स्त्री। किंतु भगवान ये क्या करते हैं, वो कुछ नहीं करती, वो एकदम बावरी बनी हुई है प्रेम में, ये सब करते हैं भगवान। इसलिए उनका गोपियों के प्रति कभी भी ईर्ष्या द्वेष कलह नहीं, इस प्रकार से भगवान पालन पोषण करते हैं। हमें जो आता है दुख और कष्ट हमारे साधन के समय में, हम अब उसके अभी योग्य नहीं है, इसलिए भगवान को जरूरत नहीं है जी हमारे लिए ऐसा कर रहे हैं। किंतु ऐसा भी जगत में भी देखा जाता है शुद्ध साधकों साधकों के लिए, विशिष्ट गोपियां उन्मादिनी हैं, हम जाएंगे उद्धव जी सोच रहे हों तो इनको कैसे समझाएंगे, उसी के लिए ये कह रहे हैं मदर्थ है मेरे लिए ये सब त्याग करते हैं, तभी मैं घर में हूं, आपको जाएंगे तो घर में मिलेंगी और आप देखेंगे आपसे बातें करेंगी, हैं उन्मादिनी, दूसरा कोई नहीं समझता, महा महा भागवत लोग समझ सकते हैं उन्मादिनी। सुखदेव गोस्वामी ने उसका वर्णन किया है, दूसरे लोग समझते थे ये साधारण गोपों की स्त्रियां हैं, कोई आचार नहीं है, विचार नहीं है, ऐसा देखती, किंतु इसका वर्णन किया है कौन, महाभागवत सुखदेव गोस्वामी ने, और भगवत स्वरूप हमारे बादरायण व्यास जी ने वर्णन किया उनकी स्थिति, नहीं तो गोपियों को कोई नहीं समझता, इतना कहने पर भी नहीं लोग नहीं समझते हैं। अरे साधारण लोग हमारे अभी 100-150 वर्ष के बाद बंशीदास बाबा जी को नहीं समझ सके उनके आचार विचार को, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के विचार आचार को नहीं समझ सके, उनका विरोध किया, कितना विरोध किया, उनको मारने के लिए जान से चेष्टा की। इसलिए मैं उनके इस धर्म की रक्षा करता हूं, वो आपको घर में ही मिलेंगी, कहीं खोजना नहीं पड़ेगा, कहां मिली वो, उद्धव क्यारी में मिली, वो लोग समझ रहे हैं उनके पति जो घर में ही है, तो घर में वो नहीं थी, वो कौन थी, उनकी प्रतिमाएं जैसी उनकी थी, जोग माया ने ऐसा बनाया था, उनके व्यवहार आदि धर्म का भी मैं रक्षा करता हूं, उनके बदले में मैं उस मूर्तियों से रक्षा करवा देता हूं। अतः तुम वहां पर जाओगे, पति पुत्र इत्यादि के साथ में घर में ही देखोगे, ऐसे धैर्य गंभीर शालिनी गोपियों की भाव मुद्रा का तुम दर्शन करोगे और अपने को धन्य मानोगे। इसलिए उद्धव ने क्या कहा, नहीं गोपियों ने विरह के द्वारा हमारे ऊपर में महाभाग, गोपियों ने हमारे ऊपर में अपने विरह के भावों को बतला करके प्रकट करके हमें हमारे ऊपर में परम कृपा की है, इसकी मैंने उपलब्धि। किंतु कहां उपलब्धि की, उपलब्धि कहां की? यदि उपलब्धि करती करते ये उद्धव जी तो ब्रज को छोड़कर के जाते, गोपियों की चरण सेवा में लगे रहते, सब समय उनकी चरण की धूली बन करके रहते, किंतु नहीं रह सके, चले गए मथुरा में। देखा जैसे ये गोपियां इतनी दुखी हैं कृष्ण के विरह में, तो यदि इनके पास है तो हम भी ऐसे ही दुखी हो जाएंगे। इसकी कल्पना नहीं कर सके, जो गोपियां यहां से रह करके जो सेवा कर रही हैं, वहां हम जाकर के नहीं सेवा ऐसी कर सकते, नहीं समझ सके। तादेश धैर्य गांभीर्य भामुद्र को भी दर्शन करोगे तुम, और यदि ऐसा समझते हो कि वे पति पुत्र को त्याग करके समस्त भोगों के व्यापार से रह करके खाना पीना छोड़ देंगी, सब तो वो देह की रक्षा कैसे करेंगी? इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं उनका भरण पोषण करता हूं, वे भाग में मैं उनकी रक्षा करता हूं। कृष्ण विरह में अत्यंत पागल हैं, उन्मादिनी हैं, और देख रही हैं कि तमाल वृक्ष और मिल गए सो जे कृष्ण मिल गए, बातें करने लगी, भोजन भी करने लगी, हंसने लगी, श्रृंगार करने लगी, कभी कभी भावना में ही हृदय में स्फूर्ति पाती हुई, कृष्ण आ गए मिल गए, समझते हैं जी कृष्ण कहीं गए नहीं है, गोचारण के लिए गए, बस इस प्रकार से रक्षा करते हैं। इसलिए ऐसी आशंका मत करो, इसलिए मैं ही उनकी सब प्रकार से रक्षा, मन मनस का गोपियों की बात दूर रहे, उनकी बात छोड़ दो, उनके संबंध में उनके पति और पत्नी इत्यादि का अभिमान भी मैं ही देता हूं, गोपियां उनके पास में नहीं रहती, छाया मूर्ति है, तभी वो समझते कि हमारी स्त्री हमारे पास में है, हमारी बड़ी प्रिया है, इनके ऐसे ये उनके प्रति भावना भर देती है। कभी भी ये श्रीमद् भागवत के भी उस श्लोक में है, कभी उन लोगों ने अपने स्त्रियों के प्रति कोई भी शंका अथवा ईर्ष्या नहीं की, क्योंकि समझते थे जी हमारे पास ही है। सनातन गोस्वामी यहीं पर लिखा है, जोग माया द्वारा छाया मूर्ति निर्माण करा करके ये सब काम करते हैं। अथवा यदि कोई साधारण भक्त भी उनको छोड़ दो, सिद्ध वो तो परिकर हैं, कोई काय भी हुए हैं अथवा कोई नित्य सिद्ध हैं, कोई साधन सिद्ध हैं, जो साधन सिद्ध नहीं है, अभी भाव भी अभी नहीं हुआ है, ऐसे लोग जो यदि कभी भजन में तन्मय हो गए और उनके धर्म की कुछ विपरीत उनमें बातें देखी जाती हैं, तो कौन रक्षा करता है? कृष्ण कहीं भागवत अमृत में ही आया कि उसके लिए कृष्ण ने कितने करोड़ वो महर्षियों को ले रखे हैं, जैसे उनका ये जो है ये पूरा करें, यदि किसी क्रिया का लोप होता तो उनको लगा रखा, ये तुम करो। हमारे लिए यदि इन भोगों को त्याग कर देता है तो मैं अपने शक्ति बल से उनका भरण पोषण किया करता हूं। ये जब व्याध ने अपना धनुष बाण तोड़ दिया नारद के कहने से, कहे तुम बैठ करके भजन करो, तो उसके मन में शंका आई कि मैं भोजन मुझे कहां मिलेगा और कपड़ा, कहे कोई चिंता मत करो, अपने आप लाखों लोग तुम्हारे दर्शनों के लिए आएंगे और इतना मिलेगा जो तुम खा नहीं सकते, उसमें तुम इतना ही रखना जो इस एक बेला के लिए तुम्हारा भरण पोषण, उतना ही रखना और कुछ मत लेना। हरिदास ठाकुर ने वेश्या को कहा एक कपड़ा पहन करके आ जाओ, और बड़ो बड़ो वैष्णव था दर्शन के जानती, रोटी की कमी हुई उसे कपड़े की, बस एक कपड़ा रखकर बस वहां पर भजन करना आ रहा, कमी नहीं, जो शुद्ध रूप में भजन करने वाले, किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। यदि धन की लालसा है तो सोचो जैसे ये सब पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रति ये नहीं हुआ। इसलिए असाधारण महाभावमयी गोपियों के भरण पोषण की संबंध में तुम चिंता मत करना, उनके संबंध में बोले। साधारण भक्तों के लिए भी जब ऐसी बात है जो कृष्ण उसकी रक्षा करते हैं, मैं तो समझता है जो हम लोगों के लिए वही भरण पोषण की व्यवस्था करते हैं, यद्यपि हमारी भक्ति अभी निरुपाधिक नहीं है। ये तो भक्ति के वो औपाधिक भक्ति के प्रभाव से ही ये सब चीजें हो जाती हैं अपने आप आने। यदि उसको संभाल नहीं सका कोई तो भक्ति से च्युत हो जाएगा, ये भी अनर्थ है। और भक्त मात्र के लिए अभीष्ट प्रद जो भगवान का नाम संकीर्तन धर्म है, मैं नाम संकीर्तन प्रवर्तक मैं हूं, अर्थात संकीर्तन का सामर्थ्य भी मैं ही दूंगा और मैं देता हूं ने? आप माला लेकर के बैठेंगे, माला करने की इच्छा नहीं होगी, आप लोग देखेंगे मन इधर उधर जाएगा, इच्छा होगी सो जाएं या उधर टहल आए या कुछ करें, समर्थ नहीं रहती इच्छा करने में। आज मैं यहीं पर बैठ करके 16 माला कर लूंगा तब कहीं जाऊंगा, कोई चिंता नहीं करूंगा, मैं यहीं बैठ करके पहले 1,00,000 नाम करूंगा, मन ही नहीं लगेगा, चित इधर उधर जाएगा, कभी वो काम निकलेगा कभी वो बुला लेगा, चले जाएगा, नहीं पूरा होगा यदि कृष्ण सामर्थ्य न दे। शुद्ध नाम की बात क्या है, अशुद्ध नाम भी नहीं होगा। इसलिए मैं संकीर्तन का सामर्थ्य मैं ही प्रदान करता हूं। यहां पर अकार का विश्लेष करने से जे भक्त का त्यक्त लोग इसमें अ लगा दो, क्यों के पहले अत्यक्त लोक धर्मांश मदर्थे, ऐसा यदि हम अर्थ करें तो क्या हो जाएगा, जो लोग हमारे लिए लोक धर्म आदि की को छोड़ा नहीं बल्कि उसको कर रहे हैं किंतु मेरे लिए ही कर रहे हैं, किंतु लोक धर्म को छोड़ा नहीं, स्त्री पुत्र परिवार लेकर के हैं, पांडवों जैसे हैं, लोग दान पुण्य सब काम कर रहे हैं, उनको भी मैं उनके भी लोक धर्म की मैं ही रक्षा करता हूं, उनको मैं उन गोपियों के संबंध विशेष भावे भरण पोषण कर जाता था। वो लोग भी यदि मदर्थ है हमारा वो ठीक रखें और संसार भी करते हैं कोई भी बात नहीं, हमारे लिए होना चाहिए, तो ये गोपियों के भाव विशेष को भी उनमें प्रदान करता हूं। जैसे गृहस्थ में कुछ लोग हैं, अतः हे उद्धव तुम मेरे तुल्य हो, सौम्य साम्य से सौम्य लगा लो, सब प्रकार से तुम हमारे समान हो, ये ब्रज में जाकर दीनमत पति पुत्र आदि के सुखी करिबे, कहाँ दे दीनमत उनके जो दीनमत पुत्र या पति हैं उन लोग को भी सुखी करना, कोई गोपियों को ही नहीं, गोपियों को तो करो कहीं उनको भी तुम सुखी करना, क्योंकि उनके संबंध से हैं। यदि कोई एक भक्त साधारण जगत में उत्तम भागवत है तो उसके लिए कोई साधन भजन की उतनी जरूरत नहीं होती, वो भगवान के कृपा से 21 पीढ़ी के लोगों का ही नहीं भक्ति का प्रवेश होता है, उनका उद्धार हो जाता है। कहा है ना नृसिंह देव ने, चौदह और कनिष्ठ अधिकारी भी हो तो अभी कनिष्ठ अधिकारी निष्कपट तो उसके भी 7 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है, यदि ऐसी ये भगवान की कृपा है। तो ये गोपियों के जो पति होंगे या जिनके पुत्र भी हैं किंतु कृष्ण के प्रति उनकी भावना वैसी है तो क्या उनका कुछ कल्याण नहीं होगा, ये कह रहे हैं साधारण रूप में। उनके जो पति भी हैं उस रूप में, वो कौन है? वो कृष्ण की छाया है, वो दूसरे कोई नहीं है। अभिमन्यु क्या है? उन्हीं का ये, इसलिए वो भी वैसा ही। उसके कल्याण की कोई जरूरत है कराने की किसी को? अकि गोपियों के संबंध से अपने आप ही कल्याण हो चुका है। अरे गोपियां जहां पर एक चरण रख देती है, उसे जो तीर्ण लता गुल्म से स्पर्श उनका हो जाता है, उन्हीं का कल्याण हो गया, तो इनका जरूर होगा। यदि वो समझते कि मैं इसका पति हूं, बस हो गया, तो इसलिए इनको। इससे क्या होगा? इससे भी गोपियों के धैर्य लज्जा आदि का परिपोषण होगा। ता मई ता प्रियसान पृष्ठे दूरस्ते गोकुल स्त्रिय स्मरंत्यंग विमोयंती विरह कंठ विफला। इसलिए हम लोगों को भजन पद पर एकांतिक रूप से कृष्ण के अनुगत होकर के कृष्णार्थे अखिल चेष्टा और कृष्णार्थे अखिल भोग त्याग, ये जरूर रखना चाहिए। सबसे मधुर व्यवहार होना चाहिए। इस तरह से सबको लेकर के, सब में भक्ति का हम संचार करेंगे, सबकी सहायता करेंगे, ऐसी भावना आना चाहिए जिससे कि कृष्ण की कृपा हमारे ऊपर में बरसे। कृष्ण की कृपा सब पर है, किंतु हम उसकी अनुभूति करेंगे। प्राचीनानंग भजन अतुलम श्रीनतांग दुष्कर्म में रघुनाथ दास गोस्वामी। किंतु नराश्येन जलति लेशालसस्य भक्ति। राग हम देखेंगे ना भजन की पद्धति, तो घर में लौटना ही वांछनीय है हम लोगों के, कोई आशा नहीं। वैसा हम लोगों के लिए संभव पर नहीं है, बतलाओ तो। हम मठ में रह करके, अच्छे अलसाल बिल्डिंग में रह करके, पंखे के नीचे रह करके मच्छरों से हम लोग छुटकारा नहीं पा रहे नहीं? और हमें डेंगू रोग या क्या क्या मलेरिया इत्यादि हो रहे हैं, और रोज अस्पताल में डॉक्टरों के पास में दौड़ रहे हैं, और इन लोगों के पास में, रूप सनातन के पास में मच्छरदानी तो जरूर होगी ना? कोई मच्छरदानी नहीं, कुछ नहीं, पैर में जूती तक नहीं, छाता तक नहीं। और आज से कितने वर्ष पहले, जबकि घोर जंगल होगा, अब तो जंगल नहीं है, मच्छर भी पहले से शायद कम होंगे, उस समय क्या स्थिति होगी? और उसमें कैसे रहते थे, कैसे कभी कभी किसी से मांगा नहीं कुछ, अजातक वृत्ति वाले, कैसे उनका चलता होगा? हम लोग के पास में अभी ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास में रुपये नहीं है, कुछ खाने पीने सब प्रकार की चीजें हैं, तो अभी भजन नहीं हो पाता। इसलिए हम लोग को वैसा यदि होंगे तो कृष्ण की कृपा जरूर होगी, इसलिए उस पर आश्रित रहना चाहिए। जरूर भगवान कृपा करेंगे ही या कर रहे हैं, ऐसी धारणा जरूर होनी चाहिए। प्रिय उद्धव मैता प्रिय साथ, वे मैं उनका अत्यंत प्रियतम हूं। आई एम देयर बिलव्ड, मैं उनका प्रियतम हूं, इसलिए मैं दूर रहने पर भी, अभी कहाँ है, मथुरा में, दूर रहने पर भी गोकुलांगनागन जो ब्रज की रमणियां हैं मुझे स्मरण करती हैं और एकदम उत्कंठित हो जाती हैं और मोहर मोहर मूर्छा को प्राप्त होती हैं बार बार। कहने का क्या तात्पर्य, जब मैं यहां पर दूर हूं तब उसके लिए ये बतला रहे हैं। अरे मैं वो कह रहे हैं कृष्ण जी, मैं जबकि वृंदावन में था, एक कुंज से किसी कुंज में दूसरे में प्रवेश करने पर जब हमको नहीं देखती थी तो क्या हो जाता था, विरह करके बेचैन होकर के मूर्छित हो जाती हैं, तो अब उनकी क्या दशा होगी? इसलिए उद्धव जी को बतला रहे हैं। कह रहे हैं अत्यंत आश्चर्य से, कृष्ण कह रहे हैं उद्धव जी से, क्या बड़े आश्चर्य की बात है सखे, बड़े आश्चर्य की बात है। विरह में ऐसी आधी बीमारी है, विरह का ताप इतना है, ऐसा जगत में हमने कहीं नहीं देखा। कृष्ण तो सर्वांतर्यामी है, भूतो न भविष्यति, ऐसा किसी का मनस्ताप हमारे लिए विरह में उत्कंठित हो जाता है, पुनः पुनः मूर्छित होती हैं ये गोपियां, हमने कहीं नहीं देखा। अर्थात जे विरह ताप भोग जो विरह ताप भोग कर रही हैं, जो भाव भागवत में भी नहीं वर्णन किए गए, श्रीमन महाप्रभु जी की कृपा से और उनकी प्रेरणा से रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथों में और रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने ग्रंथों में कुछ कुछ और अधिक दिया है, श्रीमद भागवत में पूर्ण नहीं है, व्यास जी वो सब नहीं लिख सके। इसलिए देखो उद्धव, वह ऐसा था जिसे कोई तुलना जगत में नहीं है, नित्य निरंतर उनका ताप बढ़ता है। यदि कोई उनको समझाने जाता है, सांत्वना देने के लिए जाता है, तो क्या होता है, और भी उनको स्मृति में आने से, स्फूर्ति होने से और भी उनका ताप बढ़ता है। एक आदमी है, एक पत्नी, एक कोई स्त्री है, उसका लड़का या पति मर गया है, हो गए समझिए जैसे 2-3 वर्ष, अब दिन रात जो रोती थी अब नहीं रोती है, अब थोड़ी थोड़ी कभी कभी रो लेती है। यदि उस स्त्री का भाई 1 वर्ष के बाद में आया तब क्या करेगी वो, क्यों रोती है क्यों रोती है क्यों, तब भैया, अरे भैया बस 2-4 घंटे चुप नहीं होगी। यदि संत, यदि चैतन्य महाप्रभु जी विलाप कर रहे हैं, बड़े ताप भोग कर रहे हों, और स्वर्ग दामोदर और राय रामानंद जी उनको समझा रहे हैं, कृष्ण थोड़े कहीं हैं दूर, कृष्ण तो तुम्हारे हृदय में ही विराजमान है। बस महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न, मेरे हृदय में है, ये तो बड़ा अच्छी बात कहा तुमने, बस हाथ लगाया नख और चीर करके देखने लगे, दोनों ने हाथ पकड़ लिए। उस समय महाप्रभु जी की क्या स्थिति होगी, श्रीमती राधिका जी जबकि कृष्ण मिलन से आ रही हूं, उस समय में सखियत वो अत्यंत विरह की दशा में है, कहती हैं मैं कहां से आ रही हूं, मैं कहां जा रही हूं, अच्छा ये तो बताओ कि मैं हूं कौन, नकल रूप में ऐसा कर रही, सचमुच स्वाभाविक रूप में मैं कहां जा रही हूं। कोई सखी कहती अपने घर जा रही, अच्छा घर जा रही हूं, तो मुझे घर किस लिए ले जा रही, वहां पर तो मेरे प्राण निकल जाएंगे यदि घर ले जा रही, अच्छा ये तो बतलाओ तुम लोग हमको सुखी देखना चाहती है या दुखी। ललिता जी ने कहा जो सुखी, अच्छा तो सुखी देखना चाहती हो, तो मैं मूर्छित स्थिति में बड़ी सुखी रहती हूँ, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, दुख की विरह वेदना मुझे तो पानी दे करके तरह तरह से हमें जगाती किस लिए हो, जगाने से तो लोग समझती नहीं ये हमें कितना दुख होता है, बतलाओ। उनका यह संतना देना भी इनके लिए इतना अधिक मर्म पीड़क होता है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। ये सब समझेंगे हम लोग यदि भक्ति का कुछ भाव आए, कृष्ण की और महाभागवत की करुणा हो तब होगा, ग्रंथ पढ़ने से नहीं होगा, 1,00,000 ग्रंथ पढ़े, साधन भजन से होगा। ऐसे निरपक्ष होकर के गोपियों जैसा त्यक्त गृह पुत्र परिवार धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछा सब कुछ छोड़ करके यदि करें, हम लोगों में अभी त्रुटियां हैं, घर बार छोड़ करके आए हैं, संपूर्ण रूप से निष्किंचन नहीं हो पा रहे, कहाँ हो रहे हैं? सब कुछ तो आ रहा है, रुपया पैसा धन संपत्ति प्रतिष्ठा आ रही है, कहाँ हो रहे हैं? वैसा हम लोग रोक सकते हैं? हो ही नहीं सकता इस परिस्थिति, तो ऐसा क्यों नहीं करते? तो अभी परिस्थिति नहीं है, अभी अधिकार नहीं है शायद, इसलिए ऐसा नहीं हो रहा। नहीं तो ऐसा निष्किंचन यदि हो जाए और वैसा नाम करें तो नए नाम गलदास सुधारया बदन गदगद रुद्धया गिरा पुलकर निचितम बपुह कदातो नाथ। एकांत में भी देखो तो खूब प्रार्थना करो कृपा के लिए निष्किंचन होकर के देखो, जैसे वैसा भाव कुछ आ सकता है, आभास के लिए भी आ सकता है, किंतु ऐसा भी तो जिसको नहीं होता है तो वो भजन क्या है? ये सब कारण परिवेश भी कभी कभी होता है। हम लोग को ऐसा परिवेश बनाना चाहिए जो सचमुच में हम लोग भजन कर सके, ऐसा, इसी के लिए वो कह रहे हैं। यहां पर मई इत्यादि मईता प्रेषा प्रेष्टे दुरस्थे गोकुल स्त्रिय और एक श्लोक आगे का धारयन्ति अतिकृष्णेन प्राय प्राणान कथंचित प्रत्यागमन संदेशैर बलभ्यमे मदात्मिका। इन दोनों श्लोकों हम इसके द्वारा इस अधिकार में तो नहीं ये इतना समझ सके, किंतु एक आभास हम समझ सकते हैं। यदि शुद्ध भजन करने वाले हैं तो ये समझेंगे, और नहीं तो कोई भी रेखा पात नहीं हमारे हृदय में, नहीं बस यहां सुना बस समाप्त। संसार में देखो मतला रहे हैं मैं इस श्लोक के द्वारा, क्या इस संसार में जितनी प्रिय वस्तुएं हैं, जितने भी प्रिय वस्तुएं हैं, बृहद भागवतामृत में या कहां कहीं एक वर्णन किया है, हमारा देश भारतवर्ष है, हमको प्रिय है, प्रिय है, हम और देशों की तुलना में भारत को हम अधिक, अपने मातृभूमि को हम अधिक प्यार करते हैं, किंतु जिस प्रदेश में हैं हम उस भारतवर्ष के और अंशों से, उस प्रदेश जब उत्तर प्रदेश में हमारा जन्म और ये है तो उत्तर प्रदेश से हमारा लगाव अधिक संबंध होगा। उत्तर प्रदेश में भी हम जिस स्थान में रहते हैं यदि और लोगों से कोई झगड़ा विवाद हो तो हम मथुरा वासियों का वृंदावन वासियों का पक्ष लेंगे, यदि हमारे परिवार वालों से किसी दूसरे मथुरा वासी के परिवार वालों से झगड़ा हो तो हम किसका पक्ष लेंगे? परिवार, परिवार में यदि स्त्री के साथ में हमारी स्त्री के साथ में हमारा भाई या और कोई यदि झगड़ा कर हो अपने परिवार का ही तो हम किसका पक्ष लेंगे? पुत्र और, जब पुत्र और स्त्री से भी हमारा विवाद हो तो क्या करेंगे? इसलिए उनसे भी हमारा शरीर, शरीर में भी प्राण जो है वो अधिक प्रिय है। प्राण से भी प्रिय क्या है? हमारा धर्म। धर्म क्या? हम जो सुख चाहते हैं वो प्रवृत्ति, उसके लिए हम अपने प्राण को भी छोड़ देंगे। लोग आत्महत्या करते हैं किस लिए? अब इस जीवन में मुझे कोई सुख नहीं मिलेगा, इसलिए रेल से कट करके मर जाते हैं। कोई स्त्री के वियोग में उसे प्रेम किया किसी से और उसने, लड़की ने दूसरी जगह शादी कर लिया तो ये क्या करेगा? उस लड़की को देखेगा तो उसे भी मारेगा अपने भी मरेगा, दोनों मरेंगे, प्रतिहिंसा होती है। तो जहां भी अपने शरीर से भी अधिक प्राण और प्राण से भी अधिक धर्म अर्थात सुख की जो लालसा है वो, और उससे प्रिय क्या है? मोक्ष। मोक्ष के लिए यदि जरूरत हो, ये मायावादी इत्यादि लोग क्या करते हैं? मोक्ष को अधिक समझते हैं। शारीरिक संसारिक क्लेशों से अत्यंत दुख निवृत्ति हो वो, और इससे भी अधिक है प्रेम लक्षणा भगवत भक्ति। प्रेम लक्षणा भगवत भक्ति के लिए हम कोटि कोटि बार प्राण को दे सकते हैं, धर्म को भी छोड़ देते हैं, किंतु इन सब में भी प्रियतम क्या है? भक्ति में भी, कृष्ण भक्ति जो है, कृष्ण भक्ति में भी, इन सब वस्तुओं में भी मैं कृष्ण उनका प्रियतम हूं, विशेष करके गोपियों के लिए प्रियतम हूं। हाय एतादृश में दुरस्त होने पर गोकुल को छोड़ करके यहाँ मथुरा में बैठा हूँ, मैं प्राण से भी अधिक प्यारा हूँ उनका। उन्हें रूप गुण यौवन संपन्ना अनर्दचनीय मदेक प्राण गोकुल ब्रजांगनागन विरह में अधिक उत्कंठा में विफल होकर के आचार विचार रहित होकर के उन्मत्त दशा को प्राप्त हो जाती है, क्योंकि मैं सबसे अधिक उनका प्रियतम हूं। हम लोग इस चीज की अनुभूति नहीं करते हैं कि बद्ध है। भगत सिंह ने किस लिए प्राण दिया? हंसते हंसते देश के लिए। देश ने उनका क्या कर दिया? दूसरे जन्म में वो सब दुखों से छुटकारा पा करके मुक्त होकर के भगवान के यहां पहुंच गए होंगे? नहीं हो सकते। हरिश्चंद्र जी डोम हुए, अपने स्त्री और बच्चे को भी बेच दिया और डोम का काम करने लगे, तो क्या हुआ? क्या हुआ? आत्मा के लिए कुछ नहीं हुआ। इसी तरह से लोग इन सब के लिए, दधीची ने प्राण किसके लिए दिया? लोक धर्म के लिए। दधीची ने भी ऐसा किया, शिवी ने भी ऐसा किया, कुछ स्वर्ग की कामना भी इसमें होगी। जब इसके लिए देते हैं तो भक्त लोग, हरिदास ठाकुर इत्यादि भक्ति के लिए प्राण नहीं देंगे? और भक्ति से भी यदि कृष्ण को कोई प्रियतम समझेगा तो वो सारा सब कुछ अपने आप साज रूप में कृष्णार्थे अखिल चेष्टा परायण हो जाएगा और कृष्णार्थे अखिल भोग भी त्याग होगा। उस समय में कृष्ण हमारा अच्छी तरह से भरण पोषण और रक्षा भी करेंगे, जैसा उनका किया है। इस चीज को पूर्ण विश्वास के साथ में भजन में उतरना। हम जाएंगे यदि भजन करने के लिए, घर छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा? हमारा ये कर्तव्य है? ये उस समय ये सब का बोध नहीं रहेगा। यदि मैं गोकुल में मथुरा यात्रा के समय करते समय में, जब मथुरा में था यात्रा के समय में, मैंने उनसे कहा मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा, और इसके द्वारा उनको मैंने सांत्वना दी थी। सांत्वना तो हुई नहीं, किंतु विश्वास किया जे कृष्ण जरूर आएंगे। कृष्ण उनको ऐसा कर रथ में चढ़ करके जल्दी से रथ हाँकवा दिया, वो चले गए, वो देखती रह गई, फिर घर को लौट आई। इस वाणी को आश्वासन पूर्वक, आश्वासन वाणी को स्मरण पूर्वक हमारे संगम की भावना करते ही जे कृष्ण हमें मिलेंगे, बस यही भावना आई। और विरह में तड़पते तड़प करके एकदम बारंबार मोह दशा को प्राप्त होने लगी, मूर्छित हो जाती है बार बार। मेरा स्मरण करके ही, किस चीज का स्मरण? वो कहती है ना उद्धव से जी, क्या कृष्ण कृष्ण क्या हमारा कभी स्मरण करते हैं? क्या करते? अच्छा, वो फूल की माला गूंथते समय, जबकि वहां मथुरा की स्त्रियां जो करती हैं, तो कृष्ण क्या कहते हैं? तुम लोगों की माला इतनी सुंदर नहीं हो सकी जितना कि उनकी होती है। अथवा ये भी कहते हैं क्या कभी, अरे गोपियां भी माला गूंथती थी किंतु तुम लोग जैसा गूंथती है ऐसा कभी भी वो गूंथ नहीं सकती थी। क्या इस प्रकार से कहते हुए भी हमारा स्मरण कभी करते हैं? किसी रूप में, अनुकूल या प्रतिकूल रूप में जो स्मरण करते हैं कि, और ये कहते कहते मूर्छित होकर के गिर जाती है ना। अंत भ्रमर गीत का अंतिम श्लोक, अपिवत मदपुर्या आज पुत्रा धुनास्ते स्मरस्य च पितृगेहान सौम्य गोपाश्च गोपान क्वचिदपि किंकरीणां गृणी भुजम् अगरु सुगन्धं मूर्धन्याधास्वत्। और ये कहते कहते मैं मूर्छित, हम लोग तो लाख बार कहते हैं, होता है कुछ? कभी अभी यहीं पर बैठे हैं, कोई कहते जैसे तुम्हारी मैया मर गई तो हम रोने लग जाए, उस दिन खाएंगे भी नहीं। यदि कहा जाए तुम्हारे बेटे को बहुत बुखार आ गया है और वो मरने से मरने मरने को है, तो हम, मैं और बहादुर जी एकदम अभी बहादुरी करके दौड़ेंगे घर पर, निकल जाएगा सारा बैराग। सन्यासी तो सोचेंगे ऐसे कुछ पैसा उनको भेज दिया जाता तो अच्छा होता। ऐसी इसलिए हे अंग, अंग माने क्या, हमारे अंग जैसे हमारे लिए प्रिय हैं, इसलिए आप हमारे अत्यंत अंग जैसे प्यारे, आप हमारे अंगों के अतिरिक्त दूसरे नहीं, इसलिए उद्धव जी को अंग का हे अंग, हे मेरे प्रिय। मंत्रीवर अत्यंत आरती, अक्षय आरती के लिए वे यहां पर अंग का भी संबोधन कर रहे हैं, और ऐसा ही श्लेष में कहा जा रहा है कि उनकी संतना के लिए अभी ही गोकुल में गमन करना कर्तव्य, अभी गोकुल जाओ, देरी मत करो, देरी मत करो, ये अंग कहने का तात्पर्य बताओ, अभी तुरंत जाओ। कृष्ण भी हाथों में हाथ लेकर के बातचीत करते हुए आ रहे हैं, रथ ऐसे ही चल रहा है, और कृष्ण उनके हाथों में ये सब उपदेश करते हैं, गोपियों को ये संदेश देना, ये संदेश देना, ये बतलाते हुए आ रहे हैं, और उद्धव जी उनका यह भाव देख करके सोच रहे हैं कि ये जल्दी से छोड़ देते तो मैं जल्दी से चला जाता, और कभी सोच रहे हैं मैं वहां जाऊंगा तो कृष्ण के बिना कैसे रह सकूंगा, वो ये नहीं समझ सकते हैं कि वहां जाने पर मैं कृष्ण को भी भूल जाऊंगा, ये समझ उनकी नहीं है, इसलिए वो कह रहे हैं। दूसरे रूप में उद्धव जी को उत्साहित भी कर रहे हैं, ये जल्दी से जाओ, इतना बजा बहुत अधिक हो गया। इस प्रकार से हाथों में हाथ रख करके विरह से उत्कंठित होकर के कह रहे हैं, ये भी कहेंगे देखो उद्धव एक बात करना, भूल करके भी ये मत कहना गोपियों से, जैसे तुम विरह में तड़फ रही हो तुम्हारे विरह में कृष्ण भी वैसे तड़फ रहे हैं, खबरदार मत कहना, नहीं तो क्या होगा, हम तो जीवित हैं किंतु उनका हृदय मक्खन सभी को मले, साथ ही साथ में मूर्छित हो जाएंगे, बड़े दुखित हो जाएंगे, खबरदार मत कहना, धीरे धीरे उनको बतलाना, कहे हाँ कभी कभी तुम्हारे विरह में तन्मय हो जाते हैं, ये कह देना, किंतु ये मत कहना विरह में अत्यंत उत्कंठित होकर के पागल हो जाते हैं, ये सब मत कहना। ऐसे ऐसे सब उद्धव को बतला रहे हैं, अब आगे कल हम बताए वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपाशः पतितानां पावनेभ्यो